پھر اس کے بعد فرمائے واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ کر سکی۔ کوشش کی لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایسی ہے جیسے کبھی گھر کے دروازے بند کریں چور پھر بھی آ جاتا ہے۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں ایک کھٹک تھی، اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دیوی تعلیم سے صاحب علم تھے، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا۔ اب ذرا سوچیں کیسا سین ہے، سگا بھائی کتنے سالوں کے بعد یوسف کے سامنے ہے۔ اب بھائی دونوں ملے بیٹھے اور اسے بتا دیا، میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ دکھ سکھ کے نام پہ یہ نہیں کہا کہ سنا تیرے ساتھ کیسے ہیں، ہم ذرا بہن بھائی بیٹھ جائیں تو اللہ معاف کرے کہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو یوسف نے چھوٹے بھائی کو تو بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تسلی دی کہ اب تو فکر نہ کر، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سگے رشتوں میں بھی دکھ سکھ کے نام پہ کبھی ایک دوسرے کی غیبتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ ہو کہ دو بہنیں بیٹھیں تو تیسری کی برائیاں اور بھائیوں کی برائیاں اور بھابھیوں کی برائیاں، اور ماں کے ساتھ بیٹھے تو پتہ نہیں کس کس کی برائیاں، یہ ایک مسلم کلچر نہیں ہے۔ جب یوسف نے ان بھائیوں کا سامان لدوایا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو؟ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے ذمہ داروں نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کو اس کے لیے اونٹ کے برابر انعام ہے، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی تھیلیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی تھیلی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ تدبیر بمقابلہ تدبیر، آپ کو یہ سب کچھ جو مل رہا ہے نا، یہ اللہ حالات ایسے بنا رہا تھا۔ یہاں بس یہ نوٹ کر لیجئے، جب اللہ نے کچھ کرنا ہوتا ہے غیر مخصوص طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس کو کیا مشکل ہے؟ اسی لیے کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جس سے وہ بنجامین چھوٹا بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے پاس ہی رہے گا، اور ساتھ ہی فرما دیا، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ کوئی اپنے علم کا مان نہ کرے، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور بڑا علم والا ہے۔ یاد رکھیے، شخصیت پرستی جب ہوتی ہے نا تو لوگ کسی ایک شخص کے علم کو اتنا کافی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد نہ کسی کی بات سنو نہ پوچھو، اور اس نے جو بات کہہ دی اس سے اچھی تو کوئی کہہ نہیں سکتا، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ اور کہاں خدا نخواستہ اپنے بارے میں یہ گمان آ جائے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص دور سے آیا، 40 سوال پوچھے، اور ہر بات میں امام مالک کہتے ہیں، لا ادری، آئی ڈونٹ نو۔ ہم ہوتے کہتے کتنی بےزتی ہو گئی، ہمیں نہ بھی آتا ہو نہ کوئی پوچھے بھی نہ، ہم اس کو بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو خود کو علم والا سمجھتا ہے وہ علم والا نہیں ہے۔ عالم پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو اپنے علم کی لمیٹیشن کو جانے۔ میں کتنے پانی میں ہوں، ہم چار لفظ پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا دین سیکھتے ہیں، کچا پکا ادھرا پدڑا چھٹیوں سے بھرا ہوا علم، ہم کہتے ہیں بڑے عالم بن گئے۔ علم وہ ہے جو آپ کے جسم کا حصہ بنے، اس کو دل پہ اتاری ہے، عمل کا حصہ بنا ہے، اور جس علم نے آپ کو بدلا نہیں ہے وہ علم نہیں ہے۔ ابھی آپ کو اور علم لینے کی ضرورت ہے اس وجود کے اوپر۔ جیسے کھانا کھاتے ہیں نا تو جسم کو لگتا ہے نا گروتھ ہوتی ہے، طاقت آتی ہے، انرجی ملتی ہے، آپ کا قد بڑا ہوتا ہے، دن بدن آپ کے چہرے پہ چمک آتی ہے، تو اس کے اندر وہ کھانا ہضم ہو رہا ہے۔ اور اگر سارا کھانا جسم پہ لگتا جائے اور آپ کے جسم سے گندگی بن کے نکلتا جائے تو آپ کی ہیلتھ نہیں ہوگی۔ تو یہاں علم کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی کہ سارے علم والوں سے بڑا عالم اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ میں ارادہ کر کے سوتا ہوں، صبح میں رات کو کچھ اور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ مزید علم لینے کی خواہش رکھنی چاہیے۔ جس نے اپنے علم کو کافی سمجھ لیا، اب مجھے اور کیا چاہیے، سمجھیے کہ اس کے علم کا دروازہ اب آگے سے بند ہو گیا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخوه من قبل، ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا۔ یا پھر نیگیٹیوٹی ہے، माजी की बातें, कुछ लोग हैं पुराने घड़े मुर्दे छोड़ते नहीं। और याद रखे भाई बहनों में ये बात बड़ी आम होती है, इंतहाई नापसंदीदा बात, बचपन साथ गुजरा होता है। कभी बचपन में नाक बह ही गया होगा आपका, आप देखिए 20 साल बाद भी आपका तो वही है जिसका नाक बहता था। इसीलिए फिर लोग अपने बहन भाई और अपने खानदान के लोगों को तबलीग नहीं करते। तो देखिए बचपन की बात और है भी झूठी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पे लगा रहे हैं। यूसुफ इनकी ये बात सुनकर पी गए। हम होते तो पीते, हम कहते ठहर जो मुझे बताओ जरा मैंने तुम्हारी क्या चोरी की। अभी तक यूसुफ ने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं यूसुफ हूं, लेकिन खामोशी से खुद पे लगे इल्जाम बर्दाश्त कर रहे हैं, तारीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। अंदर रखते कि कंटेन, कंटेन क्या होता है, अंदर रखे। कंटेनर किसको कहते हैं जिसमें चीजें आती हैं। अपने इस जिस्म को, अपने इस दिल को कंटेनर बनाए, करो बातें, शाबाश करो, ताने दो, इल्जाम लगाओ, बुरा को मेरे बारे में बदगुमानी फैलाओ, मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ। आई एम कीपिंग एवरीथिंग इन माई साइड। आप देखिए हलीम बनती है ना, सबको डाली दो बाद में घोटते हैं, घोटते हैं कितनी मजे की हलीम बनती है। ऐसी ही हलीम फितरत बन जाती है बंदे की जो हर बात को अंदर रख ले। आज का पारा आपको क्या दे रहा है, अंदर रखो, बाहर ना बनो। आप देखिए खाना पकाएं और सारा खाने का पानी सूखता ही जाए और सारे घर में स्मेल हो, खाने में कोई टेस्ट नहीं होगा। अब सब डालें, ढक के हल्की आंच पे पकाएं, यकीन करें उस खाने का टेस्ट ज्यादा होगा। सारी खुशबू तो हम बाहर गिरा देते हैं, फैला देते हैं। तो जब तक लोगों की बातों को सुनकर खुश ना हुए, तब तक अल्लाह ने आपका किरदार पुख्ता नहीं किया। हजरत यूसुफ का किरदार आपको मुझे यही दिखा रहा है। आप देखिए पूरी सूरत में यूसुफ के जाहरी हुसन की कहीं बात नहीं आई, उनकी आंखों, उनकी पलकों, उनकी जुल्फों, उनके हसन की बात नहीं है। जहां बात आ रही है इन्ना लनराक मिनल मुहसिनीन, अंदर का हुसन दीजिए अपनी बच्चियों को, किरदार ऐसा बनाइए, खिदमत गुजार बनाइए, लोगों को स्माइल देने वालियां, मोहब्बत करने वालियां, प्यार करने वालियां, फिर देखिए उनके नसीब कैसे होते हैं। हम अपने बच्चे को खूबसूरत तो नहीं बना सकते, जो शक्ल अल्लाह ने दे दी ले ली, आप और मैं उसको मुहसिन और मुहसिना बना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये बातें सीखने वाला बना दे। और यूसुफ वो बात पी गए और हकीकत उन पर ना खोली और जेरे लब बस इतना कह दिया कि तुम बड़े ही बुरे लोग हो, मेरे मुंह दर मुंह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, इसकी हकीकत अल्लाह खूब जानता है। क्या पता चला कि जब यूसुफ नहीं बोले तो अल्लाह बोलता है, जब आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते ना तो अल्लाह ताला आपके लिए हालात और असबाब ऐसे प्यारे बना देता है कि खुद ब खुद आपके सामने वो बातें आती हैं। अब देखिए इधर यूसुफ को चोर कह रहे हैं और मुंह पे के कालू या अय्युहल अजीजू, ए अजीज जी इक्तदार, यानी दिल में कुछ था, उनको तो पता ही नहीं कि ये शख्स यूसुफ है। ऊपर से उनको बहुत ही बड़ा टाइटल और ऑनर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, दिल में बोझ रख रहे होते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ, जुबान पे कुछ ना कुछ उनको अच्छा लाना ही पड़ता है। क्या कहा, ए सरदार जी इक्तदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। ये टाइटल यूसुफ से कोई नहीं छीन सका क्योंकि ये सच्चा टाइटल था। यूसुफ ने कहा, बखुदा किसी दूसरे शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया है, इसको छोड़कर किसी दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में आपस में मशवरा करने लगे। इनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वाले तुमसे अल्लाह के नाम पर अहदो पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहां से हरगिज़ ना जाऊंगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दें या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे, और ये कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो, अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है। तीसरा मौका है इनकी नेगेटिविटी को देखने का। हमने इसे चोरी करते हुए देखा नहीं, जो कुछ हमें मालूम हुआ बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब की निगेबानी तो हम कर नहीं सकते थे। आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, इस काफले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। इतनी सफाइयां तब क्यों ना पेश की जब यूसुफ को कुएं में फेंककर आए, तब तो झूठे थे ना। इससे पता चलता है जो सच्चा होता है वो कोशिश करता है अपनी सच्चाई को बयान करने की। बाप ने यह दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात को सहल बना दिया। या फिर नफ्स की शरारतों को देखिए कि तुम कैसे बदबख्त हो। इतनी बड़ी बात तुम्हें आसानी से समझ आ गई, यानी इतनी बड़ी बात को तुम इतना आसान समझते हो। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा। क्या वईद कि अल्लाह इन सब को मुझसे ला मिलाए। या याकूब अलैहिस्सलाम को एक बाप और एक नबी के रूप में देखिए, चोट पे चोट पड़ रही है और आपको तक के हाथ दुखा हो ना, फिर वहीं से दुखे तो ज्यादा तकलीफ है। यूसुफ का सदमा तो पड़ा था, हो सकता है उस वक्त कुछ जवानी भी थी, पहला सदमा था। अब बिन्यामीन का सदमा और साथ एक तीसरे बेटे के भी ना होने का सदमा, लेकिन क्या फरमा रहे हैं, फसबरुन जमील, काला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। ये किरदार खूबसूरती लाता है एक इंसान के अंदर। और साथ ही कह रहे हैं कि वो सब कुछ जानता है और इसके सब काम हिकमत पर मबनी है, होपफुल है, देखना इसमें कोई हिकमत होगी। फिर वो इनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गए और कहने लगे, या सफा यूसुफ, या सफा। अब बेटों के सामने तो बहुत स्ट्रांग रहे, लेकिन अलग होकर क्या कहा, या असफा अला यूसुफ। अभी कौन जुदा हुआ है, बिन्यामीन, मुंह पे किसका नाम आ गया, क्योंकि दिल में यूसुफ का दर्द अभी भी था, गम अभी पड़ा था। और जाके कहा, हाय यूसुफ, वो दिल ही दिल में गम से घुटे जा रहे थे और इनकी आंखें सफेद पड़ गई थी, यानी रो रो के आंखों का नूर चला गया। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ को याद करते रहेंगे। चौथा मुकाम है बदतमीजी का, बाप से कैसे बोलते हैं। याद रखिए, बेटे जैसे बोलते हैं ना, फिर बाद में बहुएं और पोते पोतियां भी वैसे ही बोलने लगती हैं, बादब बा नसीब, बेअदब बे नसीब। नौबत ये आ गई है कि इसके गम में आप अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। या मैं और आप भी सोचें, हम किस किस से करते हैं, बेस्ट फ्रेंड से, शौहर से, और किस से करते हैं, हर आने जाने वाले से। खुद से पूछिए, कभी मुझ पर अगर कोई तकलीफ आ जाए तो मैं किसको सुनाती हूँ। हम तो हर एक को सुनाते हैं, अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। असल यही है कि इंसान उसी को सुनाए जिसने दूर करना है। आप देखिए कि जो दूर कर सकते हैं उसको नहीं सुनाएंगे तो दूसरों से क्या फायदा होगा। और दूसरी बात देखिए कि अक्लमंद बाप बच्चों के सामने भी नहीं रोता, क्योंकि आप एक दफा रोएं, बच्चों के दिल से आपका रोब भी चला जाएगा। और दूसरी बात एक और भी इसमें समझ आती है कि हंसता इंसान सबको अच्छा लगता है। आप अपनी बीमारियां, अपने दुख तकलीफें दूसरों को बहुत सुनाएंगे ना, तो याद रखिए वो थक जाएंगे। यानी वो लोग जो बुढ़ापे की वजह से या बीमारियों की वजह से परेशान है, खत्तुल बसा कोशिश करें किसी को ना सुनाएं। और मैं ऐसी माशाल्लाह ख्वातीन को जानती हूँ, एक जवाब है उनके पास 10 सवालों का, क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक है, अल्हम्द, एक ही जुमला उन्होंने बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बनिए, बुजुर्गी में और बुढ़ापे में अपना इखलाक खराब करना, जो मिलने आए, अम्मा जी क्या हाल है, बैठो अब मैं सुनाती हूँ, एथे पीड़ ओथे पीड़, इधर दर्द उधर दर्द, क्या कर लेंगे ये लोग, ये कोई डॉक्टर है, ये कोई हकीम है, ये तबीब है, और ये कोई आपका दर्द दूर कर सकते हैं। जितना मुश्किलों का जिक्र करेंगे मुश्किल बढ़ेगी। आप आजमा के देखें, इंजेक्शन लगाते हुए जिस्म को ढीला छोड़ें, आंखें बंद कर लें, एक सेकंड की सी होगी और ख़त्म, और आप जिस्म को कड़ाएं और रखें, ये ना हो वो ना, उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। और याकूब अलैहिस्सलाम का तो दिल अंदर से टूटा हुआ था, एक नहीं दो नहीं तीन बच्चों का गम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का खुलासा है, जितनी देर किसी की कोई चीज़ खोई रहती है उसको उतनी देर अजर मिलता रहता है। कभी आपकी गाड़ी की चाबी गुमी, सेल फोन तो अक्सर ही गुमा रहता है, और वो भी बच्चों वाली माओ का, अल्लाह की पनाह, और मिलता भी बच्चों के हाथ से ही है। ये हदीस लिख लें दिल पर, जितनी देर आपकी कोई चीज़ गुमी रही, अल्लाह आपको वहां अजर दे रहा है। तो कहेंगे गुमी रहे, अब जरा हजरत याकूब के अजर की इंतहा तो देखिए, 40 साल से एक बेटा खोया हुआ था, अल्लाह उनको अजर देता रहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला याकूब अलैहिस्सलाम के भी दर्जे बुलंद करना चाह रहा था। और आप ये भी याद रखिएगा कि जितना आप अल्लाह पे राजी रहेंगे, अल्लाह तआला जब खोई हुई चीज़ आपको वापस देगा ना, तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत देगा। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने गम और अपनी परेशानी की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। ये दुआ अपनी ज़ुबान पर रखें, छुपाए नहीं छुपरा गम, लेकिन मैंने नहीं बताना। और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हो तुम नहीं हो। मेरे बच्चों जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टो लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसकी रहमत से बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया, ए सरदारे बा इक्तदार, तीसरी दफा आए अब हम और हमारे अहलोयाल सख्त मुसीबत में मुबतला है। अब यहां जरा सा उनका तकबर और गरूर टूटता हुआ देखें। कल तक अकड़ कितनी थी, नाहन उसबा, आज देखिए जरा जुमले क्या हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, या अय्युहल अजीज, मस्सना वहलना दुर्रु व जीना बी बिदातिन मुजातिन, के हम और हमारे अहलोयाल सख्त मुसीबत में मुबतला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं। यदि जब कहत पड़ा तो पैसे भी खत्म, अब तो पैसे भी नहीं है। आप हमें भरपूर गल्ला अनायत फरमाएं और हमको खैरात ही दे दें। इसको हाईलाइट करें, व तसद्दक अलैना इन्नल्लाहा यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, हमें खैरात ही दे दीजिए, अल्लाह खैरात देने वालों को जज़ा देता है। अल्लाहु अकबर। हर अरूज को जवाल है, याद रखिए बुरे हालात में तो सब झुक ही जाते हैं, मज़ा ये है कि अच्छे हालात में झुकें। अब यूसुफ का दिल पसीजा, जज्बात तारी हो गए। ये सुनकर यूसुफ से रहा न गया, उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? हाँ, मगर जबकि तुम नादान थे। शर्मिंदा होने से बचा लिया भाइयों को, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। वो चौंक कर बोले, हैं क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, और अल्लाह ने हम पर एहसान किया कैसे, कद मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाहा ला यदीउ अजरल मुहसिनीन। हकीकत यह है कि अगर कोई तकवा और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। अब जरा भाइयों के जुमले सुनिए, सब्र तो यूसुफ ने बहुत किया लेकिन इतना प्यारा बदला मिलेगा ये कभी सोचा भी ना होगा। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا, उन्होंने कहा, बखुदा के तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी है और वाकई हम ही खताकार थे। आपका मेरा भी दिल यही चाहता है कि हमारे मुखालिफ भी यही जुमले बोलें, बट हम 40 साल सब्र नहीं कर सकते। दुश्मन मुखालिफ जिसने कल तक आपको तकलीफ देना चाहिए, जिसने आपको दुख देना चाह, आज वो क्या कह रहा है, अल्लाह ने आपको हम पे फजीलत दी, आप ही सच्चे थे मैं ही झूठा हूं। कितना सबर और हौसला था यूसुफ का, इतना अरसा बर्दाश्त किया, आज कितनी खुशी हुई होगी। याद रखिए थोड़ा सा सबर कर लें, अल्लाह जिन लोगों से आज आपको गालियां सुनवा रहा है ना, कल उनकी दुआएं दिलवाएगा। जो आज आपकी बुराइयां करते फिरते हैं ना, कल वो आपकी खूबियों के गुण गाएंगे। जो आज आपसे लिए दिए रहते हैं ना, कल आपके सामने नियाजमंद होके खड़े होंगे। बट इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, सबर तकवा और एहसान बांध के ले जाइए आज अपने दुपट्टों की कोनों के साथ। सबर तकवा एहसान, सबर तकवा एहसान, सबर तकवा एहसान, ये तीनों जमा हो जाए तो ये है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह पे राजी रहिए, फिर कोई बाल को बीका नहीं करेगा आपका इंशाअल्लाह ताला। अब यूसुफ के पास कितना अच्छा मौका आ गया, ठहर जो जरा, अब तुम्हें सही करता हूँ, तुम्हें अब समझाता हूँ तुमने क्या किया। अब इस वक्त यूसुफ कुछ भी कर सकते थे ना, लेकिन जरा सुनिए और देखिए यूसुफ का तर्ज अमल। قال لا تسريب عليكم اليوم, यूसुफ ने जवाब दिया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं बल्कि यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुमको माफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला। ना शर्मिंदा किया, ना डांटा, ना डपटा। इसको इंग्लिश में कहते हैं विन विन, दिलों को जीतिए, आप भी जीते अगला भी जीते। ये बहुत कमजोर लम्हे होते हैं, हम ऐसे वक्त में कहते हैं, मैंने कहा था ना मैं सच्ची हूं, लग गया ना आज पता, दिखाया ना अल्लाह ने तुझे, नहीं क्या होगा। देखिए हम क्या चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, यही चाहते हैं ना, और दोस्त भी करें तो दुश्मन भी करें। अब आप दोस्तों को तो एक साइड पे कर दें, यहां तो भाइयों के रूप में दुश्मन खड़े हैं ना। अगर इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको शर्मिंदा करते, ताने देते, इल्जाम देते, क्या होता, क्या उन भाइयों के दिल में यूसुफ की मोहब्बत पैदा होती कि नफरत? चुप करके सब्र करके सुनते रहते। यूसुफ का गुस्सा ठंडा हो जाता, दिल ठंडा होता, फिर कहते चलो जाओ माफ करो, चलो गले लगाओ। यूसुफ ने क्या किया? भाइयों के दिल जीते, ये दिल जीती है। हमारी तो कोई इतनी बड़ी जंग ही नहीं लगी हुई, और हम में से किसी को अल्लाह की कसम हमारे बहन भाइयों ने कुओं में नहीं फेंका। हमारी तो छोटी छोटी लड़ाई है, रिश्ता लिया छोड़ दिया, जायदाद में से बहनों को हिस्सा नहीं दिया, और वो शौहर बेचारों ने कुछ पैसे माँ को भेज दिए। क्या गम है हमारे, और हम कहते हैं मरते दम तक नहीं बख्शूंगी, कब्र की दीवारों तक नहीं बख्शूंगी, शक्ल नहीं दिखाना, मैं नहीं दिखूंगी, तू मर गया मैं नहीं आऊंगी, मैं मर गई तुम ना आना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना दिफा दीन का किया होता तो आज दीन गालिब होता, जितना इस नफ्स के बुत का करते हैं यहां बैठे बैठे के। ला तसरीब अलैकुम अल यौम। और नबी सल्लम ने हजरत यूसुफ के ये जुमले बोले थे, कब? जब आपके सामने 21 साल के मुजरिम खड़े थे, 13 मक्का के और 8 साल मदीना के, और सब कह रहे पता नहीं आज मोहम्मद हमारे साथ करेंगे क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये बताओ कि तुम मेरे से क्या उम्मीद रखते हो? कहे मोहम्मद हमें तुमसे अच्छी उम्मीदें हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाओ फिर वही कहता हूं जो यूसुफ ने कहा था अपने भाइयों को, ला तसरीब अलैकुम अल यौम, तो माफ कीजिए लोगों को, गंदगी बुगज खराबी सब उतार के फेंकिए इधर, क्यों लिए फिरते हैं नफरतों को। 10-10 साल हो गए सगे भाई बहन नहीं मिले क्योंकि रिश्ता टूट गया था, सगी बहनें दोनों आपस में मिलती क्योंकि उनके मर्दों ने कारोबार किया था, फिर एक दूसरे से फूट पड़ गई। सारी जिंदगी सिर्फ के अपने वजूद के इन लोगों को दिफा कराएंगे? माफ कीजिए, हल्के फुल्के हो जाएंगे। यहां बैठ के मैं आपको 3 सेकंड देती हूं, किसी के लिए दिल में गुस्सा गिला नाराजगी कहें जाओ ला तसरीब अलैकुम अल यौम, और नहीं माफ करेंगे आप तो अगले का क्या जाएगा? उसको पता है कि आपने उसके नहीं माफ किया हुआ, बोझ आपके ही दिल पे है, ये आपका ही हार्ट अटैक का जरिया बनना है, ये कल आपकी शरियानों को तंग करेगा, ये आपको भी खुदा ना खास्ता ब्रेन स्ट्रोम करवा देगा जो आपने नेगेटिविटी दिलों में पाली है। जिन्होंने अल्लाह के रस्तों में निकलना होता वो इतना बोझ नहीं उठा सकते। उसको भी माफ किया जिसने कुछ किया, उसको भी किया जो करेगा, और पेश की माफी है जो कहना कह लो, बस तुम मेरी बात मान लो। जब आप इस दर्जे पे भी न्याज हो जाते हैं, लोग आपको कुछ कहते भी नहीं, याद रखिए सिर्फ उसको लोगों की बातें चुभती है जो फील बहुत करता है, और हम सबसे ज्यादा फील करते हैं अपने बारे में, मुझे किसी ने मुझे क्या कहा, मुझे ये समझा, मेरी कदर नहीं की, मुझे डिवैल्यू किया, बस खत्म। तो जाइए आप अपने आप को किसी बड़े से पहाड़ पे खड़ा करके एक स्टैचू बनवा लें अपना। वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू। अब वो देखिए वो जो एक खूबसूरत सीन था वो पूरा हुआ, सब खत्म हो गई। अब क्या हुआ? अब बाप याद आ गया, भाई सारे जमा हो चुके हैं, अब बाप की तरफ नजर गई। क्या फरमाते हैं? इस खबूबी कमीज ही हाजा, जाओ मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, इनकी बेनाई पलट आएगी, और अपने सब अहलो याल को मेरे पास ले आओ। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो इनके बाप ने कनान में कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। क्यों भाई, ये खुशबू कहां से आ गई? यूसुफ तो पिछले कितने 20-25 साल से मिस्र में है, आपको खुशबू आज क्यों आई? जब अल्लाह चाहता है तब आती है, नबी गैब नहीं जानते। और ये कमीज की कोई खूबी नहीं, यही कमीज देखकर तो याकूब की आंखें गई थी, अगर आज यही कमीज आंखों पर डलने से बिनाई आएगी तो असल बात कमीज की नहीं है, कमीज के रब की है। लेकिन अब यूसुफ की खुशबू बाप को महसूस हो रही है। तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूं। घर के लोग बोले, अब ये घर के लोग कौन है? बहू और बच्चे हैं, क्योंकि बेटे तो सारे वहां हैं पीछे, अभी वो बेटे वापस आ रहे हैं तो पीछे घर में डायलॉग हो रहा है, बूढ़े बाबा जी कह रहे हैं लग रहा है यूसुफ आ रहा है, यूसुफ की खुशबू है। तो जब घर में पोते पोतियां और बहुएं होंगी क्या कह रही हैं? खुदा की कसम आप अभी तक इसी पुराने खब्त में पड़े हुए, जो जुबान बेटे बोलते हैं ना एक वक्त आता है वही घर वाले भी बुजुर्गों के साथ बोलने लगते हैं। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो इसने यूसुफ की कमीज याकूब के मुंह पर डाल दी और यकायक उनकी बेनाई वापस आ गई। अल्लाह जिनकी बेनाई गई भी उनकी भी वापस ले आ। तब इसने कहा, मैं तुमसे कहता न था, मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या जानते थे याकूब? यूसुफ का ख्वाब याद था कि मेरे इस बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह इसको वापस लाएगा। सब बोल उठे, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें। तौबा कर ली, देखिए नदमुत तौबा, भाइयों ने किया कत्ल का इरादा भाई के, पर तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ कर दिया। वाकई हम खताकार थे, इसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरख्वास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। यहां से आप देखिए सहरी के वक्त में दुआएं करने की बात भी समझ आती है। आजकल हमारे आपके पास कितना वक्त है, जब सहरी में उठते हैं ना, जिस वक्त में आप बच्चों को कोस रहे होते हैं ना, उठते नहीं, खाते नहीं, जल्दी आ जाओ, आवाज दी, उस वक्त दुआएं दिया करें। आप जैसे बच्चों को उठा रहे हैं ना, ऊंची आवाज से उनके नाम लेके दुआएं करें, जो भी, गुड्डू की दुआ, पप्पू की दुआ, मिट्टू की दुआ, बबली की दुआ, जो आपके गुड्डू पप्पू शप्पू है ना, उनकी दुआएं करें। ये दुआएं सुनकर उठेंगे, ये माँ क्या बोल रही है। और जब गालियां और सलवाते सुन के उठना है, तो वो खाते हैं आपके पराठे पके हुए, वो कहते हैं खाओ अम्मा खुद। तो बदजुबान ना हो, अपने बच्चों की मत ना मारें गालियां और बुरा कह के, तो दुआएं दें। सहरियों में बिगड़ी हुई औलादें और उनके नसीब और उनके दीन और उनकी नमाजों और उनकी हिदायत की दुआएं करें, और जान माल की भी हिफाजत हो तो ईमान की भी हिफाजत हो, अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे, तो इसने अपने वालदैन को अपने पास बिठा लिया। सुभान अल्लाह, अपने वालदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। ये था वो मोड़ जब बनी इसराइल मिस्र पहुंचे, और ये मिस्र की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। और ये मोहसिन थे कि सिर्फ अपने सगे रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, बल्कि पूरे कुंबे बस्ती को बुलाया। कहते 70-80 के करीब लोग थे, सारी बिरादरी को कहा, चलो आओ अब तुम मिस्र में आकर रहो, तुम शाही मेहमान हो। शहर में दाखिल होने के बाद इसने अपने वालदैन को उठाकर अपने पास तख्त पे बिठा लिया। वकाला या बती हाज़ा तावील रोया या मिन कब्ल, और सब इसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने देखा था। कद जअलहा रब्बी हक्का, मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया। कितने साल बाद यूसुफ का ख्वाब सच हुआ? 40 साल बाद। हम रात को ख्वाब देखे सुबह इंतजार कर रहे होते हैं, पूरा नहीं हुआ, आज ख्वाब बड़ा अच्छा देखा था। उलमाए कराम मुफसरीन कहते हैं, किसी ख्वाब के ताबीर होने तक 40 साल भी लग सकते हैं। बचपन का ख्वाब देखा हुआ 40 साल की उम्र में पूरा हो, अल्लाह अकबर। और जुमले देखिए, सोने के पानी से लिखने वाले हैं, वक़द अख़सनबी ज़ख़रजनी मिनसिजनी, उसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझको मिला दिया। ये क्या हुआ, कैद खाने से निकालने की बात की है अल्लाह से, कुएं में डालने की कोई नहीं की, और वो औरतों के अटेम्प्ट करने की नहीं। ये नबियों का अदब है अल्लाह के साथ भी। हमेशा अच्छी बातें याद रखी, रदी तो बिल्लाह रब्बन, हम अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हमें पता है तूने हमें बड़ा आजमाया, अल्लाह हमें पता है तूने हमें बड़ी बीमारियां दी हैं, अल्लाह हमें पता है तू हमारे ऊपर बहुत ज्यादतियां कर चुका है, लेकिन तुम्हें माफ कर दे। कद अख्सनबी को रट लें, कद अख्सनबी, ऐ मेरे मालिक तूने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया, ऐ मेरे मालिक तूने मेरे साथ अच्छा किया। वो कहते हैं कि सीधा साधा बाबा था, कुरान पढ़ना नहीं आता था, कुरान से प्यार बड़ा था, तो कुरान खुलाता और हर लाइन पे एक जुमला बोलता, ऐ रब जो आखे सच आख्याई, ऐ रब जो आखे सच आख्याई, ऐ रब जो आखे सच आख्याई। कद अख्सनबी, कह कर देखें, यहां बैठ के कहें, ऐ अल्लाह तूने आज तक जो मेरे साथ किया है तूने बहुत ही अच्छा किया। दिल पे हाथ रख के कर लें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, एम्बुलेंस बुला लेंगे अगर दिल पे चोट पड़ी तो। कहें अल्लाह को, मेरे मालिक जो दिया वो भी अच्छा किया, जो दे के ले लिया वो भी अच्छा किया, जो नहीं दिया वो भी तूने बहुत अच्छा किया है। जो तूने मेरे पे बीमारियां तकलीफें और गम और मौतों की सूरत में सदमे डाले, कद अख्सना भी, तूने बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू मेरे अल्लाह, तूने मुझे याद तो रखा। इस दर्जे पे जरा राजी तो रही है तस्लीम और रजा। हमें क्या पता हमने क्या जिया, अभी तक तो अल्लाह से ताल्लुक ठीक नहीं हुआ और बंदों से हमारे कहां ठीक होने। और एक जुमला लिख लें, जब तक अल्लाह से ताल्लुक ठीक नहीं होगा बंदों से कभी ठीक नहीं होगा। जितना बंदों का बिगाड़ है ताल्लुकात में, उसकी वजह पीछे एक बड़े ताल्लुक की कमी है। तो बंदों से ऊपर उठिए, अल्लाह पे नजरें लगाइए। और साथ ही फिर कहते हैं कि भाइयों को शर्मिंदगी ना हो, इसलिए फरमाया, मिम बादिया नज़ग शैतान बैनी व बैन इख्वती, हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था, वाकया यह है कि मेरा रब गैर मखसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है। सच है ना, ऐसे रास्ते बनाता है अल्लाह ताला, बंदा सोच भी नहीं सकता। बेशक वो अलीम और हकीम है। अब अल्लाह के साथ बातें। अब यूसुफ की जिंदगी का मिशन पूरा हुआ। आज के पारे की दुआ भी यही है। क्या है? ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। जमीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखरत में मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और इंजामे कार मुझे सालेहीन के साथ मिला। अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह इंजाम बिल खैर कर दे, खात्मा बिल खैर कर दे। यहां से देखिए अच्छी सोहबत की खूबी है। हर नबी ने ये दुआ मांगी और हजरत यूसुफ को अब दुनिया में और क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। अब कहते हैं कि अल्लाह नेक लोगों की सोहबत, सोहबत सालेहीन। क्यों? फरमाया कि नेक लोगों की सोहबत मांगा करो, ये तुम्हें भी नेक कर देंगे, और बुरों की सोहबत से बचो क्योंकि ये तुम्हें नेकों से बदगुमान कर देंगे। ये गालिबन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल है। कहते हैं बुरों की सोहबत से बचो, क्यों? कि बुरों की सोहबत तुम्हें नेक लोगों के खिलाफ कर देगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अब सूरत का खतिमा, कहानी किसको सुनाई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए अब फरमाया नबी, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जो हम आप पर वही कर रहे हैं, वरना आप उस वक्त मौजूद ना थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में इत्तफाक करके साजिश की थी। मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो, इनमें से अक्सर लोग मान कर देने वाले नहीं है। जिसने नहीं मानना उसने अब भी नहीं मानना। हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते हो, ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। इसको जरा सा हाईलाइट करें। तो हमने दुनिया वालों को आम कर दी ये नसीहत? ये सोचने की बात है। जमीनों आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जो नहीं करते। सच है कि नहीं? ना कायनात पे गौर करते हैं, ना कुरान पे गौर करते हैं, और ना जिंदगी में होने वाले वाकयात और हालात पे गौर करते हैं। ये ना समझिए क्योंकि मसरूफ ही बहुत है। और याद रखिए, शैतान ने मसरूफियत के नाम पे हमें इतना मसरूफ किया कि जिस जिस वक्त पे हमें गौर व फिक्र करके अल्लाह का कुर्ब लेना होता है ना, उस वक्त में वो दुनिया की चीजों को हम कर देता है। पहले लोग इफ्तारी के लिए बैठते थे, सब बैठे हैं दुआएं मांग रहे हैं। अब क्या? टिक कमर्शियल्स, जो अच्छे बुरे एड्स हैं वो उन आपको दिखाएंगे। क्यों? वो अजान सुननी है ना, कोई रेडियो चला लेगा, कोई खबरें सुन रहा है, कोई कुछ, और वो मनपसंद उछलती कूदती तस्वीरें दिखाएंगे। कभी नहीं था ये टीवी तो लोग सुन लेते थे अजाने। तो जब कभी आपको ऐसा वक्त नसीब हो जाए अल्लाह से बात करने का, तो बाहर की सारी डिस्ट्रेक्शंस को बंद कर दें। अब हमारा हाल है, हर बच्चे ने अपने फोन पे टाइम लगाया होता है, किस वक्त अजान होनी है, किस वक्त नमाज होनी है। दिन ब दिन आप देखिए कि हम पास वालों से दूर और दूर वालों से करीब होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। जमीन और आसमान में कितनी ही निशानियां हैं, लोग गुजरते हैं जरा तवज्जो नहीं करते, और इनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं मगर उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। ये है वो आयत जिसने पहली दफा मुझे इस सोच पे माइल किया था कि मैं अकीदा और तौहीद पढ़ूं। क्योंकि इस आयत में क्या कह अल्लाह ने, बहुत सारे कलमा गो ऐसे हैं जो हैं अंदर से मुशरिक। जब मुझे फर्स्ट टाइम ये आयत समझ आई मैं कांप के रह गई। फिर मैंने किताब तौहीद पढ़ी थी, बहुत मोटी किताब है, हर बात पढ़ के ऐसे लग रहा था मेरे अंदर भी शिरक है, दिखावा, दुनियादारी, खानदान परस्ती, रस्म और रिवाज परस्ती। तो याद रखिए कि ईमान वाला होना, कहना कहलाना और बात है, और शिरक से मुबर्रा होना और बात है। तो लिहाजा जरूर तौहीद को अपने लिए एक टॉपिक बनाइए कि जिस पे आपने मजीद इल्म हासिल करना है इंशाअल्लाह ताला। फिर आगे चंद बातें शऊर को बेदार करने वाली। अफ अमीन तात यहुम गाशिया तुम मिन अजाबिल्ला, क्या ये मुतमईन है कि अल्लाह के अजाब की कोई बला इन्हें दबोच ना लेगी, या बेखबरी में क्यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी? तुम इनसे साफ कह दो मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। बड़ा प्यारा जुमला है, ये जुमला नोट कर लें। हाजी ही सबील या दुल्ला अला बसीरतिन, बस ये है कि ईमान वाले का मनहज, ये मेथडोलॉजी है, ये है आपका मेरा मिशन कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, और खुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूं, और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है, और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। अल्लाह हम सबको और हमारी इस उम्मत को शिर्क से पाक कर दे, और उसके लिए कुरान आम करना पड़ेगा। ऐ नबी, तुमसे पहले जो हमने पैगंबर भेजे थे वो सब भी इंसान थे, और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे, और इन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग जमीन पर चले फिरे नहीं हैं कि इन कौमों का अंजाम इनको नजर ना आया जो इनसे पहले गुजर चुकी थी? यकीनन आखरत का घर इन लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगम्बरों की बात मानकर तकवा की रविश अख्तियार की। क्या अब भी तुम लोग ना समझोगे? पहले पैगम्बरों के साथ भी यही होता रहा कि वो मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर जवाब ना दिया। यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी ये समझ लिया कि इनसे झूठ बोला गया था, तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा ये है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरमों से तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। हर नबी की कौम का जिक्र आप कुरान में पढ़ेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र कहीं भी नहीं है। क्यों? यूसुफ की जिंदगी के जाती गम इतने ज्यादा थे कौम की कोई बात ही ना हुई। और हकीकत है कि हर एक की आजमाइश मुख्तलिफ होती है। अगले लोगों के इन किस्सों में अकल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं इन्हीं की तस्दीक है और हर चीज़ की तफसील, और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। न जाने आपने मैंने इसमें से क्या लिया। असल बात ये है, सूरत तो बुरी हो गई ना, यूसुफ जुलेहा के रिश्ते की बात हुई ना शादी के मौके पर इस सूरत को फूकने की बात हुई। हम इतने जाहिर हैं कि हम फिल्मी स्टोरी की तरह इसको भी एंड करते हैं। कई लोग बाद में सवाल करते हैं, मुझे एक मौके पे जब मैंने ये पढ़ाई तो एक पर्ची आई क्वेश्चन आंसर्स में, ये बताएं कि यूसुफ की जुलेहा से शादी हो गई थी, आपको पूरी सूरत में जुलेहा का नाम मिला? ये लोक दास्तानों का हिस्सा बनाने वाले अगर इन सूरतों पर गौर व फिक्र कर लेते तो बहुत कुछ होता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उसी तरह रिश्ते निभाने वाला बनाए जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनाई। यहाँ पे सूरत पूरी हुई।